राम राम हरे हरे,
राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण।
हरे
श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर स्कान पुणे में प्रातः श्रीमद भागवत के सत्संग में आज अद्वैत आचार्य प्रभु के आविर्भाव दिवस के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के अंतर्गत 30वें अध्याय में प्राचीन बरहित के पुत्र ध्रुव वंश में कर्मठ राजा प्राचीन बरहित के पुत्र प्रचेता भगवान शंकर के शिष्य और भगवान श्री विष्णु का साक्षात दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और भगवान श्री विष्णु उनको वर मांगने के लिए कह रहे हैं और उनके भविष्य का भविष्यवाणी करते हुए उनके समान धर्म अपृथक धर्म मतलब समान धर्म, समान धर्म मतलब भक्ति और भक्ति मतलब एक भगवान की ही प्रेममयी सेवा और पिता की आज्ञा का पालन करना दूसरा उनका गुण है। और पिता की आज्ञा पालन करने में भी प्रभुपाद जी का तात्पर्य है कि पिता है भगवान, सबका परम पिता वो है, उसकी आज्ञा पालन करना। और तीसरा उनकी तपस्या, इन तीनों से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको सृष्टि बढ़ाने का साधन, क्योंकि सृष्टि भी भगवान की एक लीला है, भगवान की सृष्टि लीला को बढ़ाने के लिए प्रचेताओं के द्वारा दक्ष प्रजापति को प्रकट करना है, जिसकी 60 जिसके 11,000 पुत्र तो ब्रह्मचारी बनेंगे लेकिन 60 पुत्रियों से सृष्टि होगी। तो ये भगवान की योजना, उसके अंतर्गत वो प्रचेताओं को समान धर्मा की परीक्षा क्या है भगवान की कि आप 10 का विवाह एक लड़की से कराएंगे और झगड़ा मत करना, ये आपका समान धर्म का पता लगेगा। बहुत मुश्किल है ये परीक्षा बहुत मुश्किल है समान धर्म की। 10 का विवाह मर्षा जो वनस्पतियों की कन्या है, चंद्रमा आपको देगा, उससे आप विवाह करना। तो उन्होंने कहा हम तो तपस्या कर रहे हैं, विवाह करके फंस जाएंगे। तो फिर भगवान ने इस श्लोक में उनको आश्वासन दिया है। तो आइए श्लोक का पाठ करते हैं। गृहेशो आविष्टां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मदवार्तायात यामानां न बंधाय ग्रहा मताः गृहेष्वावस्थतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मदवार्तायात यामानां न बंधाय ग्रहा मताः गृहेषु आविष्टतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मदवार्तायात यामानां न बंधाय ग्रहा मताः गृहेषु आविष्टां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मदवार्तायात यामानां न बंधाय ग्रहा मता गृहेष्वाविष्टां चापि
पुंशां कुशल कर्मणां मदवार्तायात यामानां नमन्नाय ग्रहां मताः ग्रहेषु आविष्टां चापि पुंशां कुशल कर्मणां मदवार्ताया दयामानां नमन्नाय ग्रहां मताः माताजी ग्रहेषु आविष्टां चापि पुंशां कुशल कर्मणां मदवार्ताया दयामानां नमन्नाय ग्रहां मताः।
तो ये शब्द है भगवान के। भगवान कह रहे हैं गृहेषु आविष्टां चापि, गृहस्त में प्रवेश करने करते हुए भी, गृहेषु मतलब गृहस्थ में और आविष्टां मतलब प्रवेशतां, गृहस्थ में प्रवेश करते हुए भी, पुंशां का मतलब कोई भी व्यक्ति, कुशल कर्मणां, प्रभुपाद जी का तात्पर्य मुख्य रूप से कुशल कर्मणां के ऊपर है। कुशल शब्द कहां से निकला है? कुश घास से। कुश घास को केवल साल में एक 15 दिन ही कुशल ब्राह्मण जड़ के साथ निकालता है, हाथ भी नहीं कटे और जड़ भी नहीं बचे, ऐसा ब्राह्मण को कहते हैं कुशल ब्राह्मण। कुश का घास जड़ के साथ बिना हाथ के कटे निकाल सके उसको कहते हैं कुशल ब्राह्मण। इसका मतलब कर्म करे, न कर्म के बंधन में पड़े और न ही कर्म का फल भोगने के लिए फिर दोबारा जन्म लेना पड़े, उसको कहते हैं कुशल कर्मणा। तो कुश शब्द भगवद गीता में कुशल कर्म नाम शब्द है। तो कुशल की परिभाषा ये है, ऐसा काम जिसका फल भोगना न पड़े और काम करते हुए भी भोग में लिप्त न हो, बाद में भी न भोगना पड़े और करते हुए भी कटे नहीं। लेकिन कुशल कर्मणा करने वाले के लिए योग्यता क्या है, कौन कर सकता है कुशल कर्म? ऐसा कुशल कर्म प्रभुपाद जी कुशल कर्म को कहते हैं भक्ति के कर्म। कुशल कर्म करने वाले के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तब कहते हैं मदवार्ता यात यामानाम। मदवार्ता मतलब मेरी कथा, यामानाम याम, याम कहते हैं 3 घंटे को, 8 याम होते हैं दिन रात में, अष्टयाम, 4 याम रात के 4 याम दिन के, यामा नाम का मतलब 24 घंटे असल में, और यात यामा नाम का मतलब, यात का एक है प्रभुपाद ने शब्द अर्थ में लिखा है एक्सपेंडेड, यतन पूर्वक अच्छी तरह से 24 घंटे मेरी कथा में लगा रहेगा तो उसके कुशल कर्म होंगे। तो कुशल कर्म अच्छा है लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत बड़ी भारी है। तो क्या होगा? न बंधाय, फिर वो बंधन में नहीं पड़ेगा, कर्मों के बंधन में नहीं पड़ेगा। ग्रह मताह, भले ग्रस्त में हो लेकिन ये मान लेना चाहिए कि वो बंधन में नहीं पड़ेगा। तो ग्रस्त में प्रवेश करने के बाद बंधन में कौन नहीं पड़ेगा? दो काम करने वाला, जो भगवान की कथा वार्ता में हर समय रमा रहता है और जिसके कर्म कुशल है, मतलब भक्ति भक्ति के कर्मों में जो लगा हुआ है, और भगवान आशीर्वाद देखते दे रहे हैं कि आप कुशल कर्मों में लगे रहोगे और आपको मेरी वार्ता सुनाने के लिए नारद जी आएंगे और आपको मेरी वार्ता सुनाएंगे, आपको बंधन से छुड़ा देंगे, क्योंकि आगे चल के नारद जी आके इनको भगवान की कथा सुनाएंगे, तब ये सब कुछ बंधन से फिर मुक्त होके भगवान की पुनः भक्ति करने जाएंगे। तो अब इन शब्दों का अर्थ तो सबको समझ में आ गया। अब श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में, अनुवाद में ही तात्पर्य है, प्रभुपाद जी के अनुवाद के अंदर भी कुशल कर्मणा शब्द का तात्पर्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो लोग भक्ति के शुभ कार्यों में, ये कुशल कर्मा की कुशल कर्मणा की परिभाषा क्या है? जो लोग शब्द किसके लिए है? पुंशाम, जो पुंशाम शब्द यहां है ना, वो है जो लोग, ठीक है। फिर है भक्ति के कुशल कर्मों में लगे होते हैं, कुशल कर्मणा, लेकिन एक शब्द भक्ति आगे प्रभुपाद ने लगाया, क्यों? कुशल कर्म कौन सा है? बोला भक्ति का। क्यों? क्योंकि उसमें फल भोगना नहीं पड़ता, बाकी सब कर्मों में फल भोगना पड़ता है, लेकिन भक्ति के कार्यों में फल नहीं भोगना पड़ता है। और फिर क्या है? कर्मों में अति अधिक आसक्त रहता है, नहीं कर्मों में, हाँ वो वे कुशल कर्म ना क्या है? अब वो परिभाषा दे रहे हैं प्रभुपाद, श्लोक में ये शब्द नहीं है, परिभाषा क्या दे रहे हैं? भक्ति के शुभ कर्मों में लगे होते हैं वे ये भली भांति समझते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त कर्मों के परम भोक्ता है। ये कुशल कर्मा की परिभाषा है। कुशल कर्मणा की परिभाषा क्या है? भगवान सारे कर्मों के भोक्ता है, हम कर्मों के भोक्ता नहीं है, भगवान भोक्ता है कर्मों के। अकार त्रिय संपना महाभागवत, जिसमें तीन अकार है वो महाभागवत है। तीन अकार में एक है अनन्य भोक्तत्व, अनन्य भोक्त और कोई भोक्ता नहीं है, केवल भगवान भोक्ता है, न अन्य भोक्ता, ये जो मान ले। दूसरा है अनन्य अंशित्व, हम केवल भगवान के अंश हैं और किसी के अंश नहीं है, अनन्य अंशित्व, अनन्य भोक्तित्व, अनन्य अहरत्व, हम भगवान के ही सेवा के लायक हैं और दुनिया के लिए नालायक हैं। ये जब समझ ले कोई, कुशल कर्मणा तब हो सकता है। इसको ना अकार त्रयी संपना महाभागवत उच्यते, तीन अकार जिसमें ये है, अनन्य अंशित्व, मैं किसी और का अंश नहीं हूं, मैं भगवान कृष्ण का अंश हूं। अनन्य भोक्तत्व, वह भगवान एक भोक्ता है और कोई भोक्ता नहीं। अनन्य अहरत्व, भगवान ही पूजन्य, हम उसके लायक है और किसी और के लायक नहीं। तो यहां प्रभुपाद जी ने कुशल कर्मणा की परिभाषा में विशेष रूप से लिखा है, काम करते हुए वो जानता है कि भगवान ही सारे कर्मों का भोक्ता है, मैं भोक्ता नहीं हूं। कर्म करने का आपको अधिकार है, लेकिन कर्म भोगने का अधिकार नहीं है। ये बड़ा आश्चर्य है, कर्मण वे अधिकार से, लेकिन भोगना आपको नहीं है। बड़ा टेक्निकल है, आप कर्म कर सकते हो लेकिन कर्म के फल को भोग नहीं सकते, क्योंकि फल देने वाला भगवान है और फल उसी को अर्पण करना है कि वो जो देता है उसी को वापस दे दो। कर्म कर सकते हो लेकिन कर्म भोग नहीं सकते, क्योंकि भोगता भगवान है। ये कुशल कर्म नाम की परिभाषा है। अतः जब भी ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है और भगवान कर देता है। यहां तक अब यह भी परिभाषा कुशल कर्मणा की है कि वो कर्म तो करता है लेकिन कर्म का फल भगवान को अर्पण कर देता है। इसलिए कोई भी काम करे तो कह कृष्ण अर्पण मस्तो, कम से कम ये तो कहते रहे कृष्ण कर अर्पण मस्तो, कहना तो सीखे कम से कम कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं। करने से पहले कहो कृष्ण प्रीति अर्थे कार्य करिष्यामि, भगवान की प्रसन्नता के लिए, हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूं, और कार्य हो जाए तो कृष्ण को अर्पण कर दिया। तो पहले ये कम से कम मानसिक रूप से कहना सीखना चाहिए कि कार्य भगवान को अर्पण कर रहे, फल भगवान को अर्पण कर रहे। तो ये इतना सारा अनुवाद कुशल कर्मणा की परिभाषा है। तो कुशल कर्मणा की परिभाषा अभी क्या, तीन बातें हो गई, वो भक्तिमय कर्मों में लगा रहता है, वो ये जानता है कि भोक्ता भगवान है, और वो ये कर्मों का फल भगवान को अर्पण कर देता है। तीन बातें हो गई ना, तो ये कुशल कर्मणा की परिभाषा है। ऐसा कब कर सकता है? तब कहते लिखते हैं प्रभुपाद जी, और भगवान की कथाओं में व्यस्त रहते हुए ही सारा जीवन बिताता है। फल भगवान को अर्पण कर दिया तो खाएगा क्या? बोला भगवान की कथा करेगा तो अपने आप सब कुछ मिल जाएगा प्रसाद, है ना। उसको कुछ फिर अलग काय के लिए कुछ करने की जरूरत है? भगवान की कथा में ही जीवन बिता देता है। भगवान को फल अर्पण करता है और भगवान की कथा सुनता है। आप क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, आते हैं मंगल आरती में, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, नाचते हैं और फिर प्रसाद मिल जाता है। कुछ करना नहीं है ना, फिर अलग काय के लिए कोई प्रयास करना पड़े। कथा में ही जीवन व्यतीत कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति ग्रस्त आश्रम में रहकर भी कर्म फलों से प्रभावित नहीं होता। ये आखिरी लाइन का अर्थ है। ऐसा व्यक्ति ग्रस्त आश्रम में रह के भी, भगवद गीता के मेरे ख्याल में 13वें अध्याय में जहां ज्ञान के लक्षण है 18, वहां ग्रस्त आश्रम के लिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने चार चीजें लिखी है। जिस गृहस्थी के पास ये चार चीजें हैं वो कर्म बंधन में फंसता नहीं है। और क्या चार चीजें हैं? घर में भगवान का मंदिर, जो घर में पके भगवान को भोग लगे, घर में भगवान के नाम का कीर्तन हो और घर में गीता भागवत का श्रवण वर्णन हो। ये चार चीजें जिस गृहस्थ के घर में होती है तो उस घर में कुशल कर्मणा और कृष्ण कथा वार्ता का वातावरण रहता है तो कर्म का बंधन उसको नहीं बांधता। तो प्रैक्टिकल प्रभुपाद जी ने ऐसे करने के लिए चार चीजें बताई हैं। तात्पर्य बहुत बड़ा है इस श्लोक का और मुख्य रूप से तात्पर्य है कुशल कर्मणा के ऊपर। सामान्यतः परिवार में रहते हुए व्यक्ति सकाम कर्मों में आसक्त अधि आसक्त रहता है, अर्थात वो अपने कर्मों के फलों को भोगने का प्रयास करता है। सकाम कर्मों का परिभाषा क्या है? अपने कर्मों के फल को स्वयं भोगना। तो प्रायः गृहस्थी ऐसे ही करते हैं, कमाते हैं और उसका फल खाते हैं। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, किंतु भक्त जानता है कि श्री कृष्ण ही परम भोक्ता तथा स्वामी है भोक्तानम यज्ञ तपसाम। अतः भक्त अपने को किसी भी व्यापार का स्वामी नहीं समझता, वो सदा भगवान को ही स्वामी मानता है, अतः अपने सारे व्यापारों के फल परमेश्वर को ही अर्पित करता रहता है। इसका मतलब है काम कोई भी करो, उस काम का स्वामी भगवान को मानो, अपने आप को उसका सेवक मानो। जो स्वामी है उसको सब कुछ अर्पण कर दो और स्वामी अपने आप सेवक का भरण पोषण करेगा तो कोई समस्या नहीं। तो भक्त ऐसे समझता है, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना ऐसी होती है। जो व्यक्ति इस तरह अपने परिवार तथा बच्चों के बीच रहता है वो कभी भी भौतिक संसार के कलमश से प्रभावित नहीं होता। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 3:9 में की गई है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र कर्म बंधनः। यज्ञ की यहां परिभाषा है विष्णु, काम विष्णु के लिए करना चाहिए। और फिर लिखा है तदर्थम कर्म कर्माणि, तत् का अर्थ है भगवान। कृष्ण कर्म भगवान के लिए कर्म करेंगे तो कौन्तेह मुक्तः संघ समाचरः, वो फिर विचरण करेगा बंधन से मुक्त। तो काम किसके लिए करना चाहिए? भगवान के लिए। काम भगवान के लिए करना चाहिए, स्वामी भगवान को मानना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल भगवान भोगना जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल भोगना चाहता है वो कर्म फल से बंध जाता है। किंतु जो व्यक्ति फल या लाभ को भगवान को अर्पित कर देता है वो उनसे नहीं बनता। सफलता का यही रहस्य है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। प्रभुपाद ने कहा ये सफलता का रहस्य है। कर्म करो, फल भगवान को अर्पण करो। ऐसा कोई काम करेगा? केवल भक्ति कर सकता है। बाकी हम काम करेंगे तो हम भोगेंगे, भगवान क्यों भोगेगा? यही दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है और इसलिए कोई सफल नहीं है। सफल वो है जो काम करके भगवान को अर्पण कर दे, और भगवान जो अर्पण करता है उसके उसके ऊपर कृपा करते हैं, अधिक कृपा करते हैं। कैसे कृपा करते हैं ये श्लोक के आप पिछले भाग में आएगा। वो निश्चित रूप से मुक्त अवस्था, हां सामान्यतः कर्म फल से मुक्त होने का उद्देश्य से ही लोग संन्यास ग्रहण करते हैं। प्रभुपद कहते हैं संन्यास ग्रहण करते हैं इसलिए कर्म के फल से मुक्त हो जाएं। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को ग्रहण नहीं करता अपितु परमेश्वर को अर्पित कर देता है वो निश्चित रूप से मुक्त अवस्था में रहता है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी पुष्टि भक्ति सामंत सिंधु में इस प्रकार की है। हरेर दास्य का मतलब इस संसार में जीते जी, हरेर दास्य का मतलब जिसने भगवान का सेवक अपने आप को मान लिया है तो फिर क्या करेगा, कर्मणा मनसा गिरा, शरीर से काम करेगा, मन से चिंतन करेगा, वाणी से जो कुछ भी बोलेगा ये सब भगवान के लिए ही करेगा। भक्ति का ये सूत्र है, भक्ति का सूत्र है 11वें अध्याय भगवद गीता का अंतिम श्लोक, मत कर्म करमो मत भक्त संग वर्जित। तीन काम करने हैं, शरीर से काम भगवान के लिए करना है, मन से भगवान को ही जीवन का लक्ष्य मानना है, और हृदय से भगवान से प्रेम करना है, वाणी से भगवान का गुणगान करना है। ये कर्म की परिभाषा है। जो भक्ति होती है वो शरीर से, मन से और वाणी से होती है। ये जो चेष्टा होती है तीन चीजों से होती है। तो तीनों चीजें जो भगवान की सेवा में लगाता है, निखिल अवस्था किसी भी अवस्था में हो, सभी अवस्थाओं में जीवन मुक्त समुच्चित, वो जीते जी मुक्त है, उसको बंधन नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन धन, अपना जीवन धन वाणी बुद्धि तथा अपने पास जो कुछ भी है उस सब से भगवान की सेवा में लगा रहता है वो हर अवस्था में मुक्त होगा। प्रभुपाद जी ने मनसा कर्मणा गिरमा के लिए लिखा है अपने जीवन धन वाणी बुद्धि तथा अपने पास जो कुछ भी है। भक्ति विनोद ठाकुर का कौन सा भजन है, मानस गेहो देहो जो कुछ मेरो अर्पिलो नंद किशोर। ये भाषा ये है। ये भाषा अगर हम कहें कि भगवान सब कुछ आपका है, हम उसके सेवक हैं, आपके सबका देखभाल कर रहे हैं, ये चेतना की बात है। भगवान लेके कुछ भी नहीं जाएगा लेकिन आपकी चेतना ऐसी होनी चाहिए। जो लोग कृष्ण भक्ति के भक्ति से रहित होकर भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं वे भाव बंधन में अधिकाधिक फंसते जाते हैं। उन्हें अपने सारे कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। अतः अब प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना अमृत संघ का मिशन क्या है। अतः यह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन मानवता के लिए महानतम वरदान है, बेनिडिक्शन है, बड़े से बड़ी, क्योंकि यह मनुष्य को कृष्ण भक्ति में सदैव लगाए रखता है। भक्तगण कृष्ण की ही चिंतन कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, कृष्ण के लिए ही कर्म करते हैं, उन्हीं के लिए खाते पीते तथा सोते हैं। खाते भी कृष्ण के लिए, सोते भी कृष्ण के लिए, सब कुछ कृष्ण के लिए, सब कार्य कृष्ण के लिए भक्त करते हैं, उनका जीवन कृष्णमय हो जाता। तो इसलिए पीते तथा सोते हैं, इस प्रकार प्रत्येक वस्तु कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। कृष्ण भक्ति में लगा पूरा जीवन मनुष्य को भौतिक कलमश से बचाता है, जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने कहा है। प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भजने यहा है अनुकूल, विषय है बलिया त्यागे तहा है भूल। कोई चीज कृष्ण की सेवा में लगाने के काम आ सकती है, उसके अनुकूल है और उसको समझे कि माया है तो ये बहुत बड़ी भूल है, ये मूर्खता है। अब ये फोन पड़ा है, इसके अंदर ये सब काम ले रहे हैं, ये सब कृष्ण की सेवा में लग रहा है, इसको कहें कि माया है तो ये मूर्खता है। हर एक चीज भगवान की सेवा में लगाई जा सकती, कुछ भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता, कुछ भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता। तो इसलिए यदि कोई इतना सक्षम हो कि प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पित कर सके तो उसके लिए इस भौतिक जगत का परित्याग भारी भूल होगा। तो भौतिक जगत को छोड़ के जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य को सीखना चाहिए कि किस प्रकार प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जाए, प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जाए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का संबंध श्री कृष्ण से है। यही जीवन का असली उद्देश्य है और सफलता का रहस्य है। भगवद गीता के 3:19 में इसकी पुष्टि की गई है। तस्माद् आसक्त सततम् कार्यकर्म समाचरः असक्तो हे आचरम कर्म परमाप्नोति पुरुषः। असक्त होके अनासक्त होके कर्म करो, आसक्त होके कर्म नहीं करो। इसलिए कर्म फल में अनासक्ति, अनासक्त भाव से कार्य कर्तव्य को की भली भांति से कर्तव्य की भांति कर्म करना चाहिए, अपना कर्तव्य समझ के कर्म करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर किया गया कर्म परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। भाई किसके लिए कर्म कर रहे हैं? भगवान के। तो जिसके लिए कर्म करेंगे वही तो प्राप्त होगा ना, जिसके लिए कर्म करेंगे वही प्राप्त होगा। तो ये प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवद गीता के 3rd अध्याय में, इंद्रिय तृप्ति हेतु तथा परमेश्वर को प्रसन्न करने हेतु भौतिक कार्यों पर विशेष विचार किया गया है। निष्कर्ष ये है कि ये एक जैसे नहीं है। इंद्रिय तृप्ति के हेतु किए गए कार्य भौतिक बंधन के कारण है, जबकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए वही कार्य मुक्ति का कारण बनते हैं। काम वही करना है, भाई लड्डू वह बेचने हैं, बाहर मिठाई वाला भी बेचता है, हम भी यहां पैसा लेके दे रहे हैं, लेकिन दोनों में लगते एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। या जो कुछ कार्य किया जा रहा है भगवान की सेवा के लिए कहा जा रहा है, बाहर जो किया जा रहा है अपने परिवार पालन के लिए और अपने भोग के लिए किया जा रहा है। काम दोनों एक जैसे, काम दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है, ये प्रभुपाद जी समझाते हैं। जबकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए वही कार्य है मुक्ति का कारण बनते हैं। वही कार्य बंधन तथा मुक्ति का कारण कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं सब वही कार्य बंधन और वही कार्य मुक्ति कैसे हो सकता है? तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, वो प्रसिद्ध उदाहरण है कि दूध की मिठाई खाने से, खीर खाने से, रबड़ी खाने से, कचौरी दूध का रसगुल्ला खाने से अगर पेट खराब हो जाए तो फिर दूध से ही बने हुए दही से उसका चिकित्सा होती है। तो वही कर्म बंधन का कारण, वो बीमारी का कारण है दूध, और वही दही उस बीमारी से मुक्ति का कारण भी है। तो यहाँ ये परिभाषा इस बात की लिखी है, दूध की बनी हुई बहुत सी वस्तुएं यथा खीर रबड़ी इत्यादि खाने से कुपच हो सकता है, किंतु कुपच होते हुए भी दूध से ही बना हुआ बना और काली मिर्ची तथा नमक से मिला मीठा मठा दही कुपच को दूर कर देता है। दूसरे शब्दों में दूध की बनी एक वस्तु कुपच करती है और अतिसार या कारण बन जा सकती है, और किंतु दूध की ही बनी हुई दूसरी वस्तु उसका। तो ये प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि काम एक जैसा है लेकिन एक बंधन से मुक्त कराने वाला है, एक बंधन में डालने वाला है। यदि कोई व्यक्ति विशेष भगवत कृपा से, कोई विशेष व्यक्ति विशेष भगवत कृपा से ऐश्वर्य को प्राप्त करता है तो उसे इस ऐश्वर्य को बंधन का कारण नहीं समझना चाहिए। जब किसी परोढ़ भक्त को ऐश्वर्य लाभ होता है तो उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। अब भगवान की कृपा दो प्रकार होती है। हरे कृष्णा, भगवान की कृपा दो प्रकार होती है। जो पक्के भक्त हैं उनको भगवान बड़ा माल देते हैं, और जो कच्चे हैं उनके पास जो है सब छीन लेते हैं। अब ये परिभाषा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, तात्पर्य की प्रभुपाद जी ने यहां लिखी है। पक्के भक्त के पास, प्रभुपाद जी इतने पक्के भक्त थे कि लाखों करोड़ों रुपए आए सब भगवान की सेवा में लगा के मंदिर बना दिए। आया कितना धन आया प्रभुपाद जी के पास। तो पक्के भक्त के ऊपर भगवान कैसे कृपा करते हैं? कुछ भी नहीं ले गए और इतना सारा आया लेकिन एक पाई भी अपने लिए, एक पैसा भी अपने भौतिक भोग के लिए खर्च नहीं किया। तो पक्के भक्त के ऊपर भगवान कृपा करके अतिशय वैभव दे देते हैं, लेकिन वो उसमें फंसता नहीं है। क्यों नहीं फंसता है? क्योंकि वो समझता है ये भगवान ने दिया है, भगवान की सेवा में लगाना है, और मेरे को योग्य समझा है कि मैं इसको सेवा में लगा सकता हूं, इसलिए मेरे को दिया है। तो प्रभुपाद जी ने कोई भी चीज अपने नाम से नहीं बनाई, सभी कृष्ण भावना अमृत के मंदिर स्थापन किए, जो कुछ कार्य किया, पुस्तक वितरण किया, लेकिन वो सब भगवान की सेवा में लगा दिया। तो अब उदाहरण के नाम भी लिखे हैं, वो उसके ऊपर प्रभाव, बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता है। ईश्वर को भगवान की सेवा में लगाना तो विधि जानता है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, पृथ्वी महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक, ध्रुव महाराज, विवस्वत मनु तथा महाराज इक्ष्वाकु जैसे अनेक राजा हुए हैं। ये महान राजा थे और इन पर भगवान की विशेष कृपा भी थी। यदि भक्त प्रौढ़ परिपक्व नहीं है तो भगवान उनके पास उनके समस्त ऐश्वर्य को छीन लेते हैं। भगवान स्वयं इस सिद्धांत को बताते हैं, यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्य तद्धनं श्रेयः। कच्चे भक्त का सब हर लेते हैं, पक्के को सब कुछ दे देते हैं। अब क्या करना चाहिए बताइए? पक्का बनना चाहिए ना? पक्का बन जाए, बनना चाहिए तो मिल जाएगा। कच्चा बनेगा तो जो है चला जाएगा, फिर चलाते फिरेंगे। और प्रभुपाद जी अपने जीवन के दोनों अवस्थाओं का अनुभव किया, पहले सब कुछ छीना गया और फिर सब कुछ मिला। प्रभुपाद के जीवन में तो देखेंगे तो, हालांकि प्रभुपाद पहले से ही पक्के थे, लेकिन उदाहरण अर्थ हमारे सामने उनके जीवन का ये सारा दर्शन सामने पड़ा है और भगवान ने दे दिया। अपने भक्त पर जो सबसे पहली कृपा दिखाता है भगवान, वो ये है उसके समस्त ऐश्वर्य का हरण कर लेता है। आप लोग बड़े घर से तैयार होकर निकले थे कि हम एम टेक करेंगे, बी टेक करेंगे, ये करेंगे, बड़ा ऐश्वर्य के पीछे पड़े थे, कच्चे थे, भगवान ने सब छीन लिया और यहां बिठा दिया आपको। अब पक्के हो जाओ और फिर माल मिलेगा, बड़े बड़े मंदिर बनाते रहो और लोगों को भगवान की भक्ति में लगाते रहो। तो भगवान ने छीना है तो भगवान देंगे, ऐसा मत समझे। लोग समझते हैं कि अब सब कुछ छोड़ दिया, नहीं हम क्या कुछ काम नहीं कर रहा, नहीं, अब इतना ज्यादा आएगा कि आप अपने जीवन में अपने प्रोफेशन से इतना कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते थे जितना अब। राधे श्याम जी जो एम टेक करके कहीं नौकरी करते तो आज 10 लाख रुपया ज्यादा से ज्यादा महीने का कमाते, इतना बड़ा मंदिर थोड़ी बनाते, ये फैक्ट्री था। तो इतना बड़ा देखो तो कितना बड़ा साम्राज्य चल रहा है, तो चल रहा है ना ये आप सब लोगों का सहयोग से। तो भगवान ने दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? अब उसकी सेवा में लगा होगा तो कोई कमी नहीं है और आता रहेगा। तो भगवान आपकी देखिए, आपसे पहले ले लिया क्योंकि कच्चे थे, और अब देंगे जब पक्के हो जाओगे। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जल्दी मत करना, नहीं तो फिर जो आएगा चला जाएगा। जो ऐश्वर्य भक्ति में बाधक होता है उसे भगवान ले लेते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति में परिपक्व है तो वे उसे सारी भौतिक सुविधाएं प्रदान करता है। अब ये दो बातें हमको इस पर तात्पर्य से लेनी चाहिए कि अभी अगर हमारा सब कुछ जा रहा है तो हमको समझना चाहिए कच्चे हैं, तो पक्का होने के लिए प्रयास करना चाहिए, और पक्का होने के लिए यात यामम मद कथा वार्ता, ज्यादा हम ज्यादा समय भगवान की कथा वार्ता में लगा रहना चाहिए तो पक्के हो जाएंगे, और पक्के हो जाएंगे तो भगवान हमारे द्वारा कोई बहुत बड़े चमत्कार के कार्य करा सकते हैं, बहुत बड़े वैभव के कार्य करा सकते हैं। तो भगवान इस प्रकार से इस श्लोक में प्रचेताओं को भगवान ने उपदेश दिया। अब हमारे पास 15 मिनट हैं, अद्वैत आचार्य के गुणगान थोड़ा कर लेते हैं। वंदे हम नसारी वंदे तम श्रीमद अद्वैताचार्यम अद्भुत चेष्टितम् यस्य प्रसादात् अज्ञोपि ततस्वरूपम् निरूप्येत्। हम वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं किसको? अद्वैत आचार्य को, श्रीमान श्रीमद अद्वैत आचार्य को। अद्भुत चेष्टतम, जिनके कार्य इतने अद्भुत हैं। कौन सा सबसे बड़ा अद्भुत कार्य है? कि गंगा के किनारे, कौन सा बालाघाट है, क्या है, एक स्थान है गंगा के किनारे शांतिपुर के पास, अब उसका नाम कुछ बाला ऐसे कुछ है, बला बाला ऐसे कुछ है, हाँ बाबला, बाबला स्थान के ऊपर सालंगरेम के ऊपर तुलसी चढ़ा के और हुंकार करके गोलोक धाम तक अपने आवाज को पहुंचा दिया और पूरे विश्व के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट करा दिया। ये उनका अद्वैत, ये उनका आश्चर्यजनक चेष्टा है, ये उनकी सबसे बड़ा आश्चर्यजनक कार्य है। यस्य प्रसादात, अगर उनकी कृपा हो जाए, आज उनकी कृपा को प्राप्त करें, आज सप्तमी है, सप्तमी है इस महीने का इस, और ये अद्वैत आचार्य का प्रकट्य दिवस है, तो उनका अगर कृपा हो जाए, अज्ञोपी कोई बड़ा मूर्ख हो, अज्ञानी हो, तत्स्वरूपम उनके स्वरूप को, भगवत स्वरूप का जो भगवत स्वरूप है निरूप्यते, उसको अच्छी तरह से प्रकाशित कर सकता है, समझ सकता है, समझा सकता है। महाविष्णु जगत करता,
महाविष्णु जगत करता,
मायया यह सृजते अधः, तस्य अवतार एवायम अद्वैताचार्य ईश्वरः। महाविष्णु जगत करता, महाविष्णु कौन सा है, कारण दक्षा है, महाविष्णु उसको कहते हैं जो सारे जगतों की सृष्टि करता है। माया यह सृजते अधः, जो माया की सृष्टि करता है, अधः, ये सारा जगत माया का है, तो जो भौतिक जगतों की सृष्टि करता है, तस्य अवतार एवायम, उसी का अवतार है ये, कौन, अद्वैत आचार्य ईश्वर, अद्वैत आचार्य ये ईश्वर, कारण दक्षाय विष्णु, महाविष्णु जो है उसका, जो ये सृष्टि करता है वो है। तस्य अवतार का मतलब वो ही नीचे उतर के आया है, और फिर अद्वैत आचार्य की परिभाषा कविराज गोस्वामी कहते हैं, अद्वैतम हरिणाद्वैतात् आचार्यम भक्ति संसनाद् भक्तावतारम ईशम तम अद्वैताचार्यम आश्रये। हम अद्वैत आचार्य का शरण लेते हैं। इसको अद्वैत क्यों कहते हैं? अद्वैतम हरिणा अद्वैत, वो हरि से, भगवान से, हरि की परिभाषा क्या है? हरि के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने दो मुख्य अर्थ कहे हरि के, भक्तों का दुख हर ले और प्रेम दे के मन हर ले। हरि सबका दुख हर ले, प्रेम दे के मन हर ले, तो हरि हरिणा हरि से अद्वैत अलग नहीं है, हरी ही है, जो हरी से अलग नहीं है, इसलिए उसको अद्वैत कहते हैं। आचार्य क्यों कहते हैं? आचार्यम भक्ति संसनात्, क्योंकि वो भक्ति का सिद्धांत का प्रचार करते हैं, वो सब शास्त्र से, कोई भी शास्त्र हो उससे भक्ति परक अर्थ को प्रकाशित करने में प्रवीण है, इसलिए उनको आचार्य कहा जाता है। हरेक कोई भी श्लोक, कोई भी शास्त्र हो, उसके अंदर से भक्ति के तत्व को प्रकाशित करने में प्रणीम है, प्रवीण है, इसलिए उनको कहते हैं आचार्य। भक्ति संसनात, भक्ति को प्रचार करने के कार्य में वो उदाहरण है। भक्त अवतारम, वो भक्त के रूप में अवतार, वो भक्त के रूप में आए हैं, भक्त के रूप में आए हैं, ईशम लेकिन है ईश्वर, तम उनको, अद्वैत आचार्य को हम शरण लेते हैं, अद्वैत आचार्य का हम शरण लेते हैं। तो ये अद्वैत आचार्य के तत्व का यहां वर्णन है। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, यहां महिमा नहीं जीवे र गोचर। अद्वैत आचार्य साक्षात ईश्वर है, ये जीवों को आसानी से समझ में नहीं आता। तो नभ देवी और उनकी माता का नाम नभ देवी है, जहां तक मेरे को ध्यान में आ रहा है, अभी देखते हैं। ये चांदने पक्ष, हाँ, शुक्ल पक्ष की सप्तमी, माघ महीने की सप्तमी को अद्वैत रूपी सूर्य चंद्रमा का उदय हुआ, प्रकाश का उदय हुआ, वो नभ देवी के यहां प्रकट हुआ और उनके पिताजी का नाम कुबेर पंडित, कुबेर पंडित और नभ देवी के यहां अद्वैत आचार्य का प्रकट्य हुआ। पिताजी उनका दर्शन करने के लिए गए, वो बड़े आश्चर्य, उनके ही प्रकाश से पूरा रूम प्रकाशित हो रहा था और सब नगरवासियों ने जब दर्शन किया तो कहा कि ऐसा अद्भुत बालक हमने पहले कभी नहीं देखा है। और फिर भक्ति रत्नाकर में घनश्याम जी लिखते हैं उनका नाम मंगल भी रखा गया था और कमलाक्ष भी कहते थे, मंगल भी कहते थे और कमलाक्ष भी कहते थे, और इन दो नाम इनके रखे गए थे। और अद्वैत आचार्य महाविष्णु और सदाशिव का मिश्रित अवतार है। और ये सदाशिव कहां रहते हैं? ये सदाशिव गोकुल में रहते हैं, भगवान के धाम में रहते हैं। ये इनका अस्तित्व जो है वहां है। और उनकी सीता ठाकुरानी और श्री, ये योग और माया, वो दोनों उनकी भारियां हैं, यहां लिखा है। एक बार चैतन्य महाप्रभु की वो पूजा कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु की पूजा क्या वो जीवन भर में तो सबकी जैसे आराधना शास्त्रों से कर रहे थे, एक दिन वो देख रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में सारे ब्रह्मांड के देवी देवता चैतन्य महाप्रभु के चरणों में दिखाई दिए। और जैसे दिखाई दिए उन्होंने कहा आज मेरे जीवन धन्य हो गया, आज मैं जिन जिन को जहां ढूंढ रहा था वो सब श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में मेरे को दर्शन हो रहा है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा अद्वैत आचार्य आज तुम मेरी पूजा कर लो। तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों को अद्वैत आचार्य ने पहले जल और कमल पुष्प, अपने गुलाब आदि कमल पुष्पों से, पुष्पों वाले जल से चरण धोए, और फिर चंदन वाले जल से चरण धोए, और फिर तुलसी और चंदन चैतन्य महाप्रभु के चरणों के ऊपर लगाया। तो अद्वैत आचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे पूजा करने का एक अवसर दिया। और उन्होंने एक तो अद्वैत आचार्य देखते थे कि क्यों बड़ी उम्र के थे, चैतन्य महाप्रभु के प्रकट्य का कारण बने, तो चैतन्य महाप्रभु उनको अपने गुरु तुल्य मान के उनको बड़ा आदर करते थे। तो उनके मन में आया कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा तब मिलेगी जब वो हमको डांटेंगे, वो डांट तो रहे नहीं है, वो तो मेरा बड़ा आदर कर रहे हैं। तो उन्होंने एक दिन चैतन्य महाप्रभु को पता लग गया कि ये प्रचार कर रहा है, किसका? निराकारवाद का प्रचार कर रहा है, भगवान का रूप नहीं होता है। तो चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आया और कहा कि तुम मेरा अंग भंग कर रहा है, अंग भंग कर रहा है। तो नाचने लगे, हाँ आज कृपा किया आपने, बहुत अच्छा हुआ, अपना माना तब डांटा, नहीं तो हमेशा हमारी प्रशंसा करते रहते थे। तो कभी बड़ा व्यक्ति, कोई वरिष्ठ व्यक्ति, गुरुजन किसी को डांटता है तो वो उसको अपना मानता है तब डांटता है। और अद्वैत आचार्य ने श्राद्ध जब किया तो अपने घर में हरिदास ठाकुर को बुला के उसको प्रसाद खिलाया। चैतन्य महाप्रभु को तो हमेशा प्रसाद खिलाया ही, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए अद्वैत आचार्य और सीता ठाकुरानी गए सची माता खस का साथ, बहुत ज्यादा संबंध था, बड़े बड़े उपहार लेकर गए थे। और अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत आचार्य का स्थान शांतिपुर और उसके पास में उनके पूजित जो शिला थी सालंगराम शिला और गोपाल की जो मूर्ति थी वो आज भी ठाकुर जी वहाँ पास में ही पूजित है। और वो ऐसा स्थान है जहाँ तीन प्रभु की बैठक कहते हैं उसको, अद्वैत शांतिपुर तीन प्रभु की बैठक है। तीन प्रभु की बैठक का मतलब है कि वहाँ चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य तीनों एक समय में वहाँ बैठे थे। और ये चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जैसे कटवा से निकले तो नित्यानंद साथ थे। नित्यानंद थोड़े आगे जाकर और कुछ गैया चराने वाले बच्चों को कहा कि यहाँ से जो ये सन्यासी आएगा ना, आपसे पूछेगा वृंदावन कहाँ है, वो आप बता देना कि ये जमुना नदी है। तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने पूछा, बोला ये जमुना है, तो चैतन्य महाप्रभु उसके अंदर कपड़ों के साथ कूद पड़े। और नित्यानंद प्रभु ने जाके अद्वैत आचार्य को समाचार भेज दिया कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे गंगा में कूद गए हैं, आप कपड़े लेके नाव में बीच में आ जाओ। तो अद्वैत आचार्य नाव लेके बीच में आए तो चैतन्य महाप्रभु कहते, आचार्य आप वृंदावन में कहाँ से आ गए? अब अद्वैत आचार्य कहते, आप जहाँ होते वहीं वृंदावन होता है, आप जहाँ वहाँ जहाँ आप वहाँ वृंदावन। आइए वस्त्र लीजिए सूखे, वो सबको वस्त्र लेके और वापस लेके शांतिपुर ले आए। और चैतन्य महाप्रभु कहते, नित्यानंद ने हमारे को धोखा दे दिया, हमारे को पकड़ के यहाँ ले आए, लेकिन वहाँ तीनों प्रभु बैठे हैं और ये इसलिए किया, लीला किया कि महाप्रभु अचानक जा रहे थे और अद्वैत आचार्य के यहाँ फिर सची माता भी मिलने आई, फिर सारे पार्षद मिलने आए, सब ने चैतन्य महाप्रभु का यहाँ दर्शन किया अद्वैत आचार्य के घर के ऊपर। वहाँ सबको वहाँ माता सीता ठाकुर ने सबके भोजन व्यवस्था ये किया। फिर सची माता ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि आप वृंदावन बहुत दूर है, मत जाइए, आप जगन्नाथपुरी में रहिए, क्योंकि जगन्नाथपुरी और नवद्वीप दूर नहीं है, एक कमरे के एक घर के दो कमरे हैं, कभी इधर से लोग उधर आएंगे, कभी उधर से इधर, तो मुझे समाचार मिलता रहेगा। तो ये अद्वैत आचार्य के घर में ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संन्यास के बाद का पदारोपण हुआ और फिर अद्वैत आचार्य स्वयं जगन्नाथपुरी जाके चैतन्य महाप्रभु से मिलके और बड़ा अद्भुत कीर्तन उनके साथ करते थे। तो अद्वैत आचार्य का आज आविर्भाव तिथि है। अद्वैत आचार्य पंच तत्वों में मुख्य रूप से ईश्वर, पंच तत्वों में हम देखेंगे तो बीच में चैतन्य महाप्रभु है, सीधे हाथ की तरफ से नित्यानंद है क्योंकि वो विष्णु तत्व है, और अद्वैत आचार्य भी सीधे हाथ पे क्योंकि वो विष्णु तत्व है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे गदाधर है क्योंकि वो शक्ति तत्व है, और उनके लेफ्ट साइड पे श्रीवास है, श्रीनिवास है, वो श्रीवास जी है, वो भी शक्ति तत्व है। तो शक्ति तत्व जो है वो लेफ्ट साइड में है और विष्णु तत्व राइट साइड में है। तो अद्वैत आचार्य बहुत बड़े दयालु हैं, वो महाप्रभु को इस धरती के ऊपर लाकर, और महाप्रभु कौन से जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को इस धरती के ऊपर लाके गोलोक और प्रेम धम हरि नाम संकीर्तन, गोलोक का प्रेम धम इस धरती के ऊपर लाए चेतना महाप्रभु, उस चेतना महाप्रभु लाकर और हम सबके ऊपर बड़ा उपकार किया है। आज उनका आविर्भाव तिथि है तो हमको श्री अद्वैत आचार्य प्रभु के चरणों में आज प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए उनकी कृपा से। क्या भजन में है? दया करो अद्वैत आचार्य, दया करो सीतापति अद्वैत आचार्य, तब बले तब कृपा बले पाए चैतन्य नित्य, तब कृपा बले पाए, आपकी कृपा के बल से ही हम चैतन्य और नित्यानंद की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो चैतन्य और हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, राधा कृष्ण के चरणों के प्रेम की प्राप्ति। राधा कृष्ण के चरण की प्रेम की प्राप्ति केवल चैतन्य महाप्रभु दे सकते हैं और कहीं से नहीं मिलेगी। बहुत से लोग कृष्ण की उपासना करते हैं, राधा कृष्ण के मंदिर हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बगैर कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम केवल उसको देते हैं जिसको नित्यानंद प्रभु रिकमेंड करते हैं कि नित्यानंद कृपा करेंगे तब चैतन्य महाप्रभु का प्रेम मिलेगा। और चेतन और नित्यानंद किसको रिकमेंड करते हैं? जो जगाई मधाई जैसे उनको प्रचार करने के लिए जोखिम उठाते हैं, प्रयास करते हैं और रिस्क उठाते हैं, लेकिन नित्यानंद और चेतना महाप्रभु दोनों की कृपा प्राप्त करनी है तो अद्वैत आचार्य को प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी कृपा से, उन दोनों की कृपा मिलेगी तो कृष्ण प्रेम मिलेगा, तो हमारे जीवन का लक्ष्य हम इस जन्म में पूरा कर सकेंगे। तो अद्वैत आचार्य वृंदावन में अद्वैत वट है, अद्वैत वट है जहां अद्वैत आचार्य का क्या है, दंत समाधि है, क्या है? हाँ, मदन गोपाल अद्वैत वट जाते हैं, हम अद्वैत आचार्य कुछ रहे हैं क्या, उनके ठाकुर जी हैं क्या, पूजित क्या है? मदन मोहन वहां से प्रकट हुए थे, अद्वैत आचार्य के पास मदन मोहन वहां से प्रकट हुए और फिर मदन मोहन वहां से जाके चोबों के पास पूजित रहे मथुरा में, और सनातन गोस्वामी के द्वारा फिर प्रकट होके आज जहां विराजमान थे, जहां मंदिर है वहां थे, और फिर वहां से चले गए, अब करौली में विराजमान है मदन मोहन जी। तो अद्वैत आचार्य प्रभु को प्रणाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ वाणी को विराम देते हैं, कोई किसी का क्वेश्चन हो, कमेंट हो, या अद्वैत आचार्य की कोई विशेष लीला कोई वर्णन करना चाहता हो। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी,
धन्यवाद जी। प्रभुपाद जी लिखते हैं रुपर्ट पासपोर्ट में, भगवान के लिए कार्य हैं, भगवान के लिए सोते हैं, भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान के चिंतन में रहते हैं, हम कैसे समझे हम भगवान के लिए कर रहे हैं?
आप कैसे समझे ये आपको अनुभव करना पड़ेगा ना। आप रोज कहो कि मैं जो कुछ करता हूँ कृष्ण के लिए करता हूँ, पहले दिमाग में ये रोज बैठ के, पहले तो एक पर्चा घर में कमरे में लगा दो कि मैं आया हूँ कृष्ण की सेवा करने के लिए, और कोई मेरे यहाँ आने का उद्देश्य नहीं, और जो भी कर रहा हूँ वो कृष्ण की सेवा के लिए ही कर रहा हूँ। ये एक चीज हम कभी भूले नहीं, सामने हमारा लिखी हुए कि हमने काय के लिए कृष्ण भावना अमृत संघ को ज्वाइन किया है, कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्रेममय सेवा करने के लिए। अब हम कुछ भी करते हैं, तिलक भी लगाते हैं तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लगाते हैं, स्नान करते हैं तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, प्रसाद खाते हैं तो शरीर हमारा कृष्ण की सेवा में लगे इसलिए। तो एक ये अपनी कॉन्शियसनेस में इनग्रेन करना पड़ेगा कि जो कुछ भी हम आए इसलिए हैं, हमारे आने का कोई और उद्देश्य ही नहीं है। अब कभी कभी हम कहते हैं कि हर एक अपने कमरे में लिखे कि वाई आई ज्वाइन टू सर्व कृष्ण, टू लव एंड सर्व कृष्ण। तो जो कुछ मेरी चेष्टा है, जो कुछ कार्य है, उसका केंद्र कृष्ण होना चाहिए। ये हमारे को, ये हमारी चेतना में अच्छी तरह से बिठाने का अभ्यास करना पड़ेगा। कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी हैं, भाई झगड़ा भी कभी करना पड़े मंदिर के लिए तो भी कृष्ण के लिए कर रहे हैं। ऐसे जरूरत पड़ जाती है कभी, ऐसे नहीं कि नहीं पड़ती है। हाँ हाँ, तो सब कुछ चेष्टा हमारी कृष्ण के लिए, ये शरीर ही कृष्ण का है, हमारा तो है नहीं। वो सनातन गोस्वामी के दृष्टिकोण से कि चेतना महाप्रभु के तुम्हारा शरीर मेरा है, तुम्हारे शरीर से मुझे काम लेना है, तो हम अपने शरीर, हमने हमारा मन कर्म वाणी सब कुछ अर्पण कर दिया है गुरुजनों के माध्यम से कृष्ण की सेवा के लिए। और कृष्ण ने जे काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, कृष्ण करे आप समर्पण, कृष्ण उसको अपनी सेवा में ले लेता है। तो इसका ये चीजें मेको थ्योरिटिकली पढ़नी नहीं चाहिए, ये चीजें हमारे दिमाग में रोज इसका रिपीटेशन होना चाहिए। जैसे हरे कृष्ण मंदिर रोज पढ़ना है ना, ऐसे रोज इसको भी पक्का करना चाहिए कि हमने कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए ये रास्ता अपनाया है। इसलिए हमारी हर चेष्टा हर कार्य केवल हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए और कृष्ण अर्पण होना चाहिए। तो ये हमारे को रोज इसका अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास करते करते हमारी चेतना में इस चीज को टिकाना पड़ेगा। नहीं तो हम आते हैं तब समझते हैं इसके लिए आए, फिर आस्ते आस्ते समझते हैं नहीं हम पता नहीं वो बात ही पता नहीं कहाँ चली जाती है और हम दूसरी तरफ चले जाते हैं, थोड़े टेंजेंट चलने लग जाते हैं कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। यहाँ तो ये पूरा प्रसंग ही यहाँ चल रहा है, एक ही इंटरेस्ट है कृष्ण की सेवा, सबका इंटरेस्ट एक है कृष्ण की सेवा, और कोई इंटरेस्ट है नहीं। नो सेल्फ सेपरेट इंटरेस्ट, नो सेपरेट इंटरेस्ट, ये डिवोटी की पहली पहचान है। नो सेपरेट इंटरेस्ट, हमारा कोई अलग भगवान से कोई विचार नहीं, कोई काम नहीं, कोई कार्य नहीं, सब कुछ कार्य कृष्ण प्रसन्नता के लिए, कोई भी कार्य कर। अरे कृष्ण, हाँ प्रभु जी,
हरे कृष्णा प्रभु जी,
हाँ जी,
धन्यवाद। आपने बताया कर्म बंधन से मुक्त होने के बारे में, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया भगवान ने कहा कि मैं ही सब कर्मों का भोगता हूँ, जो भी है सब मैं ही भोगता, तो हम जैसे सुख दुख जो हमको मिलता है, जो हम भोग रहे हैं, जो हमको सुख होता है पीड़ा होती है, तो उसका सुख कौन भोग रहा है, हम भोग रहे हैं, आत्मा भोग रही है या परमात्मा भोग रहे हैं, तो क्या परमात्मा भी सुख भोग रहे हैं?
भगवान कर्म के फल के भोगता है, जो हम कर्म करके फल भगवान को अर्पण कर दें तो उसको भगवान भोगेंगे, तो फिर हमको कुछ नहीं भोगना पड़ेगा। अगर हमने कर्म किया है तो उसका दुख और सुख हमको भोगना पड़ेगा। आपका प्रश्न ये है असल में शरीर कर्म करता है, आत्मा कर्म करती है या भगवान कर्म करता है, पहला तो ये प्रश्न है। और दूसरा है, अगर कर्म शरीर करता है तो शरीर को भोगना चाहिए, आत्मा करता है तो आत्मा को भोगना चाहिए, और भगवान करता है तो भगवान को भोगना चाहिए। आपका जो प्रश्न है वो ऐसा लग रहा है। तो इसका सिद्धांत ये है कि शरीर आत्मा इच्छा करता है कर्म करने की, भगवान अनुमति देते हैं, और प्रकृति ये शरीर रूपी उपकरण देती है, मशीन देती। अब भगवान अनुमति देते हैं इसलिए कर्म के बंधन में नहीं पड़ते, उसका फल भोगना भगवान के ऊपर लागू नहीं लगता। और ये शरीर बेचारा जड़ है, ये तो मशीन है, इसको जैसे हम चलाएंगे ऐसे चले, इसलिए ये भी इसका दुख सुख भोगने में इसका काम नहीं। आत्मा क्योंकि इच्छा करता है इसलिए कर्म का फल आत्मा को भोगना पड़ेगा। कर्ता आत्मा है तो भोक्ता आत्मा हो जाता है। अगर आप भोक्ता भगवान को बना दो, कर्तापन और भोक्तापन दोनों को छोड़ दो और निमित्त बन जाओ, तो फिर आपको कुछ भी भोगना नहीं पड़ेगा। तो भगवान नहीं भोगता है, ये पांचवें अध्याय भगवद गीता में है, नादते कश्चित् पापं न चैव सुकृतिं विभू अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मोहयन्ति जन्तवः। भगवान कहते हैं मैं किसी के पुण्य और पाप का भोग करना वाला नहीं हूं, मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूं। बोला फिर कौन भोगता है? बोला वो भोगता है। बोला क्यों भोगता है? उसका ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है इसलिए वो पशु बन गया। ज्ञानेन आवृतं अज्ञान, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, उसका ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है इसलिए जंतवा है, वो पशु बन गया है। वो अपना जैसे पशु है ना, अपना भोगता खुद बनते हैं, तो उनका तो है ही भोग, जो नहीं जो कर्म किया है उसका फल भोग ही रहे हैं। ये है भगवान किसी कर्म का, किसी के पुण्य और पाप का न भोगता नहीं है। और आत्मा के लिए इससे पहले वाला श्लोक है, ना जाते कष्ट पापन, इससे पहले क्या है, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकम सृजते प्रभु, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकम सृजते प्रभु। यहां प्रभु है आत्मा का अर्थ है, प्रभु है आत्मा के अर्थ में। आत्मा न कुछ करता है न कराता है, न किसी कर्म का दलाली करता है, तो फिर कौन करता है? स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव कराता है। अब आपके प्रश्न का असल में उत्तर ये है, हमारा स्वभाव हमारे को कुछ करने के लिए, कर्म करने के लिए बाध्य करता है। और पाप कैसे होता है? अर्जुन को भगवान ने क्या उत्तर दिया? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। तो हमारा स्वभाव रजोगुण का जब होता है तब कामनाएं होती हैं। तो पाप की परंपरा क्या है? अज्ञान। अज्ञान से अविद्या, अज्ञान पाप की जड़ है, उससे इच्छाएं उत्पन्न होती हैं भोग करने की, भगवान से अलग, और इच्छाओं से होता है पाप, और पाप का फल होता है कलेश। तो ये है परंपरा दुख की, और ये अज्ञान के कारण है, और अज्ञान के कारण हमारा स्वभाव जो है वो हमसे पाप कराता है, और हम अपने किए हुए कर्मों का फल अभी भोग रहे हैं। पशु बेचारा तो हमेशा कर्म का फल भोगता है, मानव अब चाहे तो भविष्य में कर्मों का फल न भोगना पड़े तो फल भगवान को अर्पण कर दे, तो फिर भोगना नहीं पड़ेगा। नहीं तो अब जब तक तो शरीर मिला है तो इस शरीर के साथ हमारा प्रारब्ध तो है, तो प्रारब्ध जो है वो अप्रारब्ध और प्रारब्ध, अब तो कुछ फल पके ही नहीं है, जो अब आगे चल के पकेंगे वो एक बार भक्ति में आने के बाद भुन जाएंगे, उनका तो फिर कोई फल निकलेगा नहीं। अभी जो प्रारब्ध है, इस प्रारब्ध में भी कुछ बीज के रूप में अभी पड़े हैं, जो आने वाले भविष्य के हमारे 50 साल 60 साल 70 साल में वो अपना प्रभाव दिखाएंगे, बीमारी के रूप में, किसी और कष्ट के रूप में, वो हैं पहले से तैयार पड़े, वो तो आ ही गए हैं हमारे साथ, और कुछ अभी हम भोग रहे हैं, ये पहले किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं, क्योंकि हमने खुद कर्मों को अपना कर्ता मान के और भगवान को अर्पण नहीं किया, इसलिए भोग रहे हैं। अब हमको ऐसे कर्म करने चाहिए ही नहीं जिसका फल हम भोगें, तो फिर अगले जन्म में कोई कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा, केवल भगवान के संग में, भगवान के भक्तों के संग में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जपना पड़ेगा। तो असल में पाप कराता है स्वभाव, और स्वभाव बनता है गुणों से, और गुण ये शरीर बना हुआ है गुणों का, प्रकृति के गुणों का, तो तीनों गुणों से छूटने के लिए साधन है भक्ति, तो भक्ति करेंगे तो तीनों गुणों से मुक्त हो जाएंगे, तो फिर स्वभाव हमारा बदल जाएगा, तो फिर कर्म होगा ही नहीं, और फल भगवान को अर्पण हो जाएगा, तो फिर भविष्य में कभी फल भोगना नहीं पड़ेगा। हरे कृष्ण, क्यों संतुष्ट है कि नहीं? हरे कृष्ण। हाँ मैया, एक सिद्धांत है, हमको संग देना चाहिए, संग लेना नहीं चाहिए। जब ना भक्तों के बीच में जाएं तो केवल संग देना चाहिए, संग लेना नहीं चाहिए, वन वे ट्रैफिक होनी चाहिए, केवल संग देना है, संग लेना नहीं, उनके प्रभाव से प्रभावित नहीं होना है, अपने स्वभाव से और अपने प्रभाव से उनको प्रभावित करना है, और दया के भाव से जाना चाहिए कि उनके ऊपर कृपा करनी है, वो जानते नहीं है लेकिन वो पाप कर्म करेंगे, नरक में जाएंगे, दुख भोगेंगे, उनको छुड़ाएं कैसे। असल में जगाई माधाई कौन है? सभी, बहुत सारा संसारी जगाई माधाई है, लेकिन हम अपने अनुभव की कसूटी पर बात करके बता रहे हैं आपको। अभी तक हमारा प्रचार का दृष्टिकोण है ना, वो बॉडीली कॉन्शियस के ऊपर है। आप बाजार के अंदर प्रचार करने जाएं, दुकान के ऊपर मुसलमान का नाम लिखा हुआ है तो किताब वितरण करने जाते हो, ईसाई का नाम लिखा है तो जाते हो चर्च में, और प्रभुपाद जी प्रचार करने गए तो कहो कोई हिंदू था क्या वहां? अभी रशियन को किताब हाथ में दो और कहो कि पूना में बेचना जाए, वो हर एक के दुकान पे चला जाएगा, लेकिन आप सबके पास नहीं जाते, तो आप जगाई मधाई के पास तो जा ही नहीं रहे हो। असल में जगाई मधाई पास के पास, इसलिए जगाई माधाई के पास जाने का एक ही रास्ता है। कैसे गए थे नित्यानंद? कीर्तन करते हुए। आप कीर्तन किसी के भी महल में करते जाएंगे तो कान तो वो बंद नहीं करेगा, उसके कान में तो आवाज पड़ेगा ही पड़ेगा ना, तो ऐसे लोगों को प्रचार कीर्तन से ही उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, सुकृति कैसे भी उनकी होगी। ऐसे लोगों को प्रचार करने में हम क्यों नहीं साहस करते हैं? अब यहां भारत में भी नहीं प्रचार कर सकेंगे तो और कहां जाके प्रचार करेंगे? क्यों नहीं करते हैं? असल में जगाई मधाई का मतलब है कि सबको दुख देने वाले, दुनिया के अंदर इतनी सारी आतंकवाद चल रहा है, तो ये प्रभुपाद ने तो इस्कान की स्थापना से पहले लिखा था कि पूरी दुनिया के अंदर जो कलेश है, दुख है, झगड़ा है, उसका दायित्व भारत के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने भागवत धर्म का प्रचार नहीं किया। और प्रभुपाद ने ये पहले स्कंद भागवत के इंट्रोडक्शन में लिखा है, जब इस्कान की स्थापना नहीं हुई थी, प्रभुपाद ने ये लिखा नहीं, स्वयं ने इसी को करने का प्रयास किया और बाहर जाके प्रचार किया, और ऐसी जगहों में प्रचार किया जहां कोई भारतीय था नहीं, और भारतीयों को प्रचार किया भी नहीं प्रभुपाद ने, कोई आ गया तो आ गया, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को प्रचार किया, उसके लिए रिजल्ट कितना जल्दी आए, और ये एक भी जगह ही मधाई अगर भक्त बन गया तो बहुत ज्यादा समुदाय को भक्त बना देगा, वो बहुत लाखों लोग एकदम पकड़ के ले आएगा, क्योंकि वो लोग ज्यादा जगह ही मधाई के चले हैं ना, हमारे चले थोड़ी है, एक भक्त बन गया तो लाखों को बना लेगा। लेकिन वो प्रयास अभी भी हमारे ये अभी तक हमारी मानसिकता जो है ना, वो 1200 साल गुलामी की मानसिकता से अभी तक हम निकले नहीं, हम उसको प्रचार करने में हमारे में वो साहस क्यों नहीं हो रहा। वो वेस्टर्न वर्ल्ड रशिया में जाके कर सकते हैं, अमेरिका में जाके उनको कर सकते हैं, लेकिन यहां ऐसे हमारे में क्यों नहीं है ऐसा, ये हम अभी इस कंसेप्ट बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हरे कृष्ण।
जी
प्योरिटी प्योरिटी भगवान का नाम ही शुद्ध करने वाला है, चेतो दर्पण मार्जनम। जितना सावधानी से भगवान का नाम लेंगे इतना हृदय शुद्ध होगा। पवित्रता का एक ही साधन है विष्णु विष्णु विष्णु, अपवित्र हुआ पवित्र। भगवान का नाम ही केवल पवित्र का पवित्रता का साधन है। हरि कथा हरि कीर्तन यही हमको पवित्र करेगा अधिक से अधिक। अनु लिखा यहाँ ये है, मद कथा वार्ता यत यामम, मेरी कथा और वार्ता यत यामम का मतलब अनु 24 घंटे दिन रात जहाँ हो कृष्ण वार्ता में रहेगा तो पवित्र रहेगा। भगवान पवित्र है, उनका संग करेंगे नाम के रूप में, गुण के रूप में, लीला के रूप में, विग्रह के रूप में, प्रसाद के रूप में तो पवित्र रहेंगे, और उनका संग नहीं करेंगे तो अपवित्र तो है ही। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, दाई गौर प्रेमानंदे।